मारी है। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि इस साल जो इन्होंने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं अपनी एस्टेट से सिर्फ इस साल में, जबकि लोगों के बिजनेसेस नहीं थे, उनके पास नौकरियां नहीं थी, उनको जो प्रॉफिट्स आए हैं 363 मिलियन US डॉलर्स के आए हैं, जब दुनिया के बिजनेस नहीं चल रहे थे और लोग वो जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बैठे एम्प्लॉयड बैठे थे, स्पेशली इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में खासतौर पर लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे और इनके प्रॉफिट्स जो इनके पास आए थे 363 मिलियन डॉलर्स के जो है वो आए हैं। फिर वो कहते हैं जी कि इसके साथ साथ ये जो डची ऑफ कॉर्नवॉल है उसके साथ डची ऑफ लैंकास्टर जो है वो भी बेतहाशा इनको पैसे देती है और इसका जो पोर्टफोलियो है इट हैज 949 मिलियन US डॉलर्स वर्थ, और जिससे कि इनको बहुत सारे पैसे आते हैं। और ये जो हैं वो कहते हैं जी कि प्रिंस चार्ल्स जो हैं इसलिए और इनकी रॉयल फैमिली इतनी आप देखते हैं कि कंफर्टेबल लाइव्स गुजारती हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, दुनिया के जो सारे वो ट्रैवल कर रहे हैं और फिर जो कॉमनवेल्थ है उधर से कितने पैसे आते हैं, वो कहते हैं जी वो तो हमने इस स्टोरी के अंदर अभी तक वो हमने डाले ही नहीं है, वो तो ऐड ही नहीं किए हैं, ये तो अभी सिर्फ इंग्लैंड की स्टोरी है जिसको हमने बड़ा इन्वेस्टिगेट करके और कैलकुलेट करके हमने स्टोरी बनाई है। वो कहते हैं जी अभी लेटली आपको पता ही है कि प्रिंस चार्ल्स का जैसे हमने अभी भी बताया कि अरब्स के साथ बड़ा प्यार है और अरब्स के पास बड़ा जाते हैं, उनके साथ बड़ी इन्होंने दोस्तियां बनाई हुई हैं। प्रिंस चार्ल्स के अभी बड़ी जो इंग्लिश के जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे उसमें हेडलाइंस इनकी बनी कि वैसे तो ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं लेकिन उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इनको इतना बेतहाशा पैसा कैसे मिल रहा है और कौन दे रहे हैं। तो संडे टाइम्स ने जैसे लिखा था कि जी प्रिंस चार्ल्स ने एक्सेप्ट किए हैं 3 मिलियन यूरोज इन कैश और कुछ मनी शॉपिंग बैग्स और सूट केसेस में भी स्टफ करके ये लेकर आए थे जो इनको दी थी जो फॉर्मर कतारी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी, उन्होंने दिया था। अच्छा अब इसके ऊपर इन्होंने जवाब ये दिया जी कि ये तो फाउंडेशन के पैसे थे, इसके अंदर तो मैं एक भी रुपया जो है वो अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर सकता। जिशा आमिर ये जरा तस्वीर दिखाएं जिसमें कि प्रिंस चार्ल्स ने अरब बने हुए हैं, सऊदी अरेबिया जब गए थे और वहां पे उन्होंने वो सोर्ड उठाई हुई है और वो सोर्ड पहन के और अरब्स का कॉस्ट्यूम पहन के ये नाच रहे थे वहां पे, ये इतना ज्यादा अरब्स के साथ इनकी जो है वो मोहब्बत है, तो मतलब उनका ड्रेस पहन लेते हैं और उनके साथ जो है बड़ा ये इनका वो चलता है। तो वो इंग्लैंड के अंदर जी जो संडे टाइम्स है उसने रिसेंटली एक द रिच लिस्ट, इनकी ये एनुअल कैटलॉग होती है जो कि ये छापते हैं, उस एनुअल कैटलॉग के अंदर इन्होंने कहा है जी कि प्रिंस चार्ल्स ने तो ये जो पैसे सारे अरब से तो जो लिए हैं इसके अलावा और भी 430 मिलियन US डॉलर्स जो हैं इनको शायद और भी जो साइड पे रखे होते हैं ना फंड्स जो क्वीन के साइड पे रखे होते हैं कि कभी जैसे कोई इमरजेंसी, वो भी अब इनको मिलेंगे इन सब के साथ। और बाकी जो अरब प्रिंस और उन्होंने जो गिफ्ट्स इनको दिए हुए और वो चीजें उनकी तो वैल्यू का आप पता ही नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जाहिर है कि प्रिंस था इंग्लैंड का वो भी तो आएगा तो अरब्स का तो आपको पता है जिस तरह के वो गिफ्ट्स देते हैं $5-5 लाख की तो वो घड़ी दे देते हैं एक बंदे को, तो कहते हैं जी उसका तो अभी तक कोई नहीं है। इसके अलावा ये इनहेरिट करेंगे एज किंग जो इनकी जो मदर हैं क्वीन जो थी उनका ये जो बैलमोरल कैसल था और सैंडरिंगम जो एस्टेट थी जो उन्होंने अपने वालिद साहब से ली थी, तो वो कहते हैं जी अब ये भी इनके पास जाएंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जी कि ये तो इंग्लैंड की स्टोरी है अभी, अभी जो वर्ल्ड वाइड इनकी स्टोरी है वो उसके ऊपर अभी हमने इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं की है, वो करेंगे तो हम वो दूसरा हिस्सा जो है वो लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि इंग्लैंड की ये जो रॉयल फैमिली है इसके ये छमछमे कैसे चल रहे हैं।
मिलियंस एंड मिलियंस,
बिलियंस में माजिद भाई, बिलियंस ऑफ
बिलियंस के अलावा मैं तो कहता हूं ट्रिलियंस में।
हाँ हाँ हाँ,
ये बिलियंस तो कुछ भी,
वो यही तो उन्होंने कहा है कि 28 बिलियन US डॉलर के पूरी रॉयल फैमिली
जो है वो शिकागो की बराबर है।
हाँ हाँ,
तो जस्ट इमेजिन द वैल्यू ऑफ द स्टेट
ऑफ द स्टेट, तो ऑल टुगेदर इनकी जो वर्थ है 28 बिलियन US डॉलर की रॉयल फैमिली,
दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग, दैट इज वेरी लो।
क्योंकि वो यही कह रहे हैं ना कि जो इनके प्राइवेट पोजेशंस में है चीजें लोगों के वो उनका भी हमें डिटेल्स नहीं पता है कि जो प्राइवेटली क्या ओन करते हैं,
दैट इज वेरी लो, इज लॉट मोर देन दैट,
या
लॉट मोर देन दैट,
या बट दे हैड टू आई मीन ऑफ कोर्स कीप द थिंग्स एज दे लुक ऑन द सर्फेस राइट,
दे हाँ डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते,
डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते इतना, हाँ
क्योंकि वो जो है वो टैक्स देते नहीं है।
एग्जैक्टली,
तो आप देख ही नहीं सकते कि उनके पास क्या है जिसपे टैक्स नहीं दिया या टैक्स दिया, तो वो तो टैक्स देने की उसको जरूरत ही नहीं है,
जरूरत नहीं है,
तो वो डिस्क्लोज भी करते हैं इस चीजों को, क्योंकि दैट्स रॉयल फैमिली।
यस दैट्स राइट। तो ये जनाब आज जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बड़ी आंखें खुला देने वाली एक स्टोरी है, और वो कहते हैं जी ये फ्रैक्शन ऑफ स्टोरी जो है हम आपके साथ
अभी जो है ना फिलहाल जो है वो अभी क्योंकि क्वीन अभी भी शी इज नॉट बीन बेरिड, उनका फ्यूनरल होने वाला है, और दुनिया के पूरे बड़े बड़े जो हेड ऑफ स्टेट है वो सब पहुंचेंगे उधर, उनको ट्रिब्यूट देंगे, उनको उनके साथ मौन करेंगे कि भाई ये जो है क्वीन इज डेड। मगर जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा ना थोड़ा सा,
फिर कट्टे खुलेंगे से,
उसके बाद फिर कट्टे खुलेंगे उसके बाद, क्योंकि क्वीन को तो क्यों नहीं करते थे कि क्वीन वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, शी हैड अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, इवन दो शी वॉज अ वुमन बट शी हैड अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी एंड शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग क्वीन। और वो क्वीन भी अभी से नहीं है कि 5 साल से क्वीन है वो, शी इज बीन क्वीन फॉर 75 ईयर्स। तो इसलिए जो है वो क्वीन के आगे तो कोई बात नहीं कर सका। जब अब मामला ठंडा पड़ जाएगा ये क्वीन का
तो और चीजें भी निकलेंगी। हाँ, तो आप देख लें कि अभी बेरी नहीं उनको किया, जैसे कि आपने
कॉल आपके कटे को लेंगे,
हाँ कटे को लेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि अभी बेरी नहीं किया है तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी आ चुकी है, तो अभी वो कह रहे हैं कि ये तो फ्रैक्शन ऑफ द स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें भी और भी बहुत सारी स्टोरियां आएंगी।
sure.
यानी कि ये पार्ट वन है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर आएगा, और उसमें पता चलेगा कि बाकी के जो रॉयल्स हैं उनकी किधर किधर इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो कितनी है, वो आएंगी स्टोरी। ठीक है जी, तो ये जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग आज की स्टोरी थी।
आप इससे पहले कि आप दूसरी स्टोरी की तरफ जाएं, मेरा ख्याल है कि हम
टॉप ऑफ द आवर ले लेते हैं,
टॉप ऑफ द आवर लेते हैं, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
यूके, स्विट्जरलैंड अते इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा। कैनेडा विच खालिस्तान दियां वोटां दा पहला सेंटर ब्रैम्पटन विच लगेगा। ब्रैम्पटन विच खालिस्तान दियां वोटां 18 सितंबर दिन एतवार नूं गौर रोड ते स्थित गौर मैडोज कम्यूनिटी सेंटर विच सवेरे 9 बजे तो लैके शाम दे 5 बजे तक पैणगियां। होर जानकारी लई संपर्क करो 437-423-2669 जां 437-423-2666।
The most glorious, the most exciting, the most star-studded evening is returning for its 8th edition. Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 905-279-4754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
जी
हाँ जी, दूसरी जो स्टोरी है जी बड़ी इंटरेस्टिंग है। टोरंटो में कुछ अर्सा पहले एक नया जो है कुछ बहुत ही पढ़े लिखे लोगों ने एक मीडिया द्वारा खोलने की कोशिश की है जिसका नाम है द कॉन्वर्सेशन। द कॉन्वर्सेशन जो है इसके अंदर कुछ जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के वो आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आज जो है, कल हमने आपको बताया था कि 11 सितंबर के लिए हमने जो जिना साहब की डेथ एनिवर्सरी पे आपको बताया था कि उनकी मनाई गई थी पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो है एक आर्टिकल लिखा है। ये इन्होंने द कॉन्वर्सेशन में फरा जान ने, जो कि सीनियर लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की, और हमने ये भी आपको फोर्ब्स की कल स्टोरी बताई थी कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका की, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो है वो 10th नंबर पे है। तो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में ये सीनियर प्रोफेसर हैं फराजान। फराजान ने स्टोरी लिखी है जी जिना साहब के ऊपर, और इनकी स्टोरी की हेडलाइन है एट 75 पाकिस्तान मूव्ड फार फ्रॉम सेक्युलर डेमोक्रेटिक विजन ऑफ द फाउंडर मोहम्मद अली जिना। ये हेडलाइन है जी इनके आर्टिकल की। अच्छा जी, अब इसके अंदर इन्होंने जो है फराजान ने जिना साहब के बारे में क्या बात करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर अभी आपको पता ही है बड़े डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए हुए हैं, 15 मिलियन लोग जो हैं इससे अफेक्ट हुए हैं और 1 से 2 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है, और जो इस तरह से ये हुआ। वो कहते हैं जी कि जिस वक्त ये पार्टीशन की बात कर रहे हैं, नॉट फ्लड्स की, आई एम सो सॉरी, पार्टीशन की बात कर रहे हैं कि पार्टीशन के अंदर जो है जो ये हुआ था उसके अंदर जो है तकरीबन 15 मिलियन लोग जो है अपनी जगहों से अपरूट हो गए थे और 1 to 2 मिलियन की डेथ हुई थी। और जो ये था पार्टीशन जो था ये इसलिए किया गया था क्योंकि जिना साहब पहले तो ये सोचते थे कि जनाब इंडिया में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि मुसलमान खास तौर पे यहां पे नहीं रह सकते हैं, और मुसलमान उस वक्त सब कॉन्टिनेंट का 25% पॉपुलेशन जो थी वो बनाते थे। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इनके लिए एक सेपरेट होमलैंड बनाना पड़ेगा। और ये जो है फराजान कहती हैं कि ये अब जो कुछ RSS की और बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज इंडिया के अंदर हैं उससे तो यही लगता है कि इनका जो विजन था फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ये जो था बिल्कुल ठीक था, जो कि ये वायलेंस और ये जो कुछ इंडिया में इस वक्त हो रहा है और मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो ये जिना साहब की जो कमिटमेंट थी उसको कंफर्म करता है कि एक सेपरेट होमलैंड चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि जिना साहब ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक होमलैंड जो वो क्रिएट कर रहे हैं वहां पे आइडियोलॉजी और रिलीजन की बेस के ऊपर जो है डिविसिव फोर्सेस जो है मुल्क को रूल करेंगी, सेक्टेरियन वायलेंस उस मुल्क के अंदर भी आएगी, शिया सुन्नी के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, अहमदीज जो हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे। और वो कहती हैं जी कि अभी जो प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, इसकी भी हम अक्सर रिसर्च जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, उसमें वो कहते हैं जी कि 75% ऑफ पाकिस्तानी जो हैं उनसे पूछा गया कि ये ब्लास्फेमी लॉ आप क्या समझते हैं, कितना नेसेसरी है। तो 75% पाकिस्तानीज ने कहा जी बिल्कुल ये जरूरी है हमारे मुल्क के लिए, और सिर्फ 6% ने कहा कि नहीं ये जो ब्लास्फेमी लॉज जो हैं इनको बहुत ही अनफेयरली जो है वो किया जाता है। वो कहते हैं जी जिना साहब की जो पर्सनालिटी थी और जो उनकी सोच थी और जो उनका विजन था कि एक ओपन माइंडेड मुस्लिम सोसाइटी हमने क्रिएट करनी है जिसमें के जो हर किसी को रहने की और अपने जीने की इजाजत देगी, और वो कहते हैं जी कि इसमें उनकी जो अगस्त 11th 1947 की जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो पाकिस्तान का विजन जो है किस तरह का चाहते थे। कहते हैं उस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर मॉस, टू योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो वो कहते हैं जी ये स्पीच थी उसकी और ये विजन था उस आदमी का, लेकिन आज यहां पे क्या हो चुका है, आज यहां पे इस मुल्क में 4 मिलिट्री कूज हो चुके हैं। मिलिट्री जो है वो डेकेड्स एंड डेकेड्स से आफ्टर 1958 ये रूल कर रही है, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज को रूल करती हैं, इनके अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके अपने, और वो अपने जो कमर्शियल होल्डिंग्स हैं मिलिट्री की उनको बढ़ाने के लिए जो है उनको बढ़ावा देने के लिए वो सारा कुछ काम करते हैं। इस वक्त जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा डेट जो है पाकिस्तान के ऊपर है, एंड इट इज एज हाई एज 71.3% ऑफ इट्स जीडीपी, और इनका जो टॉप 10% हाउस होल्ड्स जो हैं वो 60% ऑफ वेल्थ जो है वो कंट्रोल करते हैं, और बाकी जो बेचारे लोग हैं उनको मामूली किस्म की है। तो इसलिए जो इनकी पॉलिटिकल एलीट है, इनके लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके हाथ में सारा कुछ आ गया हुआ है, और आम लोगों को जैसे कि जिना साहब का विजन था कि हर कोई इस मुल्क के अंदर खुशी राजी खुशी रह सकता, वो नहीं रह सकता, नहीं है। वो कहते हैं जी कि जिना साहब ने अपनी कोई बुक या मेमोयर्स तो कोई लिखे नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तानी उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी लाइफ को, उनकी सेंग्स को और उनके जो एक्सप्रेशंस थे ऑफ सेक्युलर एस्पिरेशंस जो उनके थे, अगर उनको देखेंगे तो तभी ये 20th सेंचुरी में वो माइल्डस्टोन जो है वो अचीव कर सकेंगे जिसका के तसव्वुर जो है जिना साहब ने जिस स्टेट का किया था। सेक्टेरियन वायलेंस, आपस में लड़ाइयां, पॉलिटिकल एलीट को इतनी बेतहाशा पावर देनी, मिलिट्री को आउट ऑफ कंट्रोल कर देना यानी कि या डायरेक्ट कंट्रोल उसको स्टेट का दे देना, ये सब चीजें जो हैं आज जिना के विजन के अगेंस्ट हैं, और इस तरह की स्टेट जो थी वो जिना ने कभी भी नहीं चाही थी। इसलिए फराज जान साहिबा जो कि प्रोफेसर हैं, एक लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, वो कहती हैं जी कि आज पाकिस्तान जो है वो जिना के विजन से बहुत दूर निकल चुका हुआ है। वो कहीं पे भी बात तो हर उनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी पे जिना 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 बड़ा करते हैं, लेकिन कोई एक भी उसका प्रिंसिपल जो है जिना का या उसका कोई एक भी विजन जो है उसके ऊपर ये कौम जो है वो चलने को तैयार नहीं है। और वो कहते हैं जी जो कुछ इस वक्त मुल्क में चल रहा है, तो एंड में वो कहती हैं कि फैज अहमद फैज जो कि बड़े ही पॉपुलर इनके पोइट थे पाकिस्तान के, उनकी मैं एक लाइन जो है वो मैं एक कोट करती हूं कि वी मस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर दैट प्रॉमिस्ड डॉन, जिसका के जिक्र जिना साहब ने किया था।
वाओ, पावरफुल,
वेरी वेरी, मेरे तो आंसू निकल आए माजी भाई जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, तो मेरे बिल्कुल आंसू निकल आए। तो वो कहते हैं जी उस गोल्डन डॉन की आज भी तलाश में है पाकिस्तान, इवन आफ्टर 75 years हैव पास्ड। तो एक भी चीज वो कहती हैं जी कि जिना साहब के विजन के मुताबिक नहीं चल रही इस मुल्क
में। सुन के उन्होंने जो स्पीचेस की हैं, अगर उसी स्पीचेस को हम
वही उसने कहा है जी, उसने वही कहा है, उसने कहा कि उसने बुक तो कोई नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप वो जो स्पीचेस करते थे, अगर आप वो जो बातें करते थे उसी को फॉलो कर लेते पाकिस्तानी और उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर चल जाते तो ही जो है पाकिस्तान की बड़ी भलाई हो जाती।
एग्जैक्टली। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं
जी,
अब जरा ठंडी सांस ले लें।
हाँ जी,
उसके फौरी बाद आपका तीसरा जो है,
तीसरी हम स्टोरी करते हैं अपनी, स्पेशल रिपोर्ट करते हैं।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान, लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے۔ میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینیولز، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں۔ آپ مجھ سے 905-513-0012 پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا kanem.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس میں سرٹیفائیڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں۔
جی
ہاں جی، تیسری جو آج ہماری اسپیشل رپورٹ ہے یہ بھی بڑی ہی آئی اوپنر ہے، اور یہ دا وائر کی آج ایک سٹوری ہے، اور یہ وائر کی بھی کیا سٹوری ہے، یہ دوسری جگہوں پہ بھی آئی ہے، فوربس نے بھی، دوسری میگزینز اور نیوز پیپرز نے بھی اس کو کور کیا، لیکن ہر کسی نے اپنے اینگل سے کور کیا۔ دا وائر نے اس کو اپنے اینگل سے ظاہر ہے کور کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ کو تھوڑے دن پہلے بتایا تھا کہ ٹویٹر کے ایک جو فارمر امپلائی ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹویٹر کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارا لوگوں کا ڈیٹا پرائیویسی میں نہیں رہتا ہے اور بریچ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر آج یہ سٹوری ہے دا وائر کی، اور اس کی ہیڈ لائن ہے وسل بلور سیز انڈین گورنمنٹ ایجنٹ واز پلیسڈ ان ٹویٹر ٹو گاج دا کمپنیز پلانز۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس کی وجہ کیا ہے، یہ سٹوری کیوں لکھی ہے وائر نے؟ یہ سٹوری وائر نے اس لیے لکھی ہے کہ اب اس کو یہ جو لڑکا تھا پیٹر مج زٹ کو، جس کی کہ ہم نے آپ کو بات بتائی تھی، ایکس امپلائی تھا ٹویٹر کا، اس کو آج یہ جو ساری اس نے ریولیشنز کیے ہیں، یو ایس سینٹ جو ہے اس نے اس کو آج بلایا ہے، اور یو ایس سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس نے کہا جی کہ ہماری جو سینٹ جوڈیشری کمیٹی ہے اس نے کہا جی آؤ یہ ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا ڈرامہ ملک کے اندر چل رہا ہے۔ تو ایز اے ریزلٹ دس ہیز ناؤ بیکم اے ہیوج اسٹوری ان یو ایس۔ ہی اپیئر ٹوڈے ٹیوزڈے کو، آج کے دن یو ایس جو جوڈیشری کمیٹی کا جو سینٹ کا ہے اس کے سامنے یہ ہوا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا کانفیڈینس ہے، میرے اوپر بڑے ایلیگیشنز یہ لگاتے ہیں، بٹ آئی نو دس فار اے فیکٹ۔ ظاہر ہے کہ یو ایس کی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا، ورنہ جیل میں ڈال دیں گے اس کو۔ وہ کہتا ہے مجھے بڑا اس میں کانفیڈینس ہے کہ انڈیا کے جو ایک فورن ایجنٹ تھا اس کو ٹویٹر کے اندر پلیس کیا گیا تھا، اس لیے کیونکہ ٹویٹر انڈیا جو ہے وہ پرابلمز فیس کر رہا تھا، اور جو بی جے پی کی گورنمنٹ تھی اس نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ تم ہمارا ایک بندہ ٹویٹر کے اندر لگاؤ گے جو ہمیں اندر کی جو ہے وہ سٹوریز بتائے گا۔ اس کا جو ہے یہ زیٹ کو یہ کہتا ہے نہ تو وہ انجینئر تھا، نہ وہ کوئی سیکیورٹی پروٹوکولز کا آدمی تھا، نہ اس کا کوئی سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق تھا، وہ صرف اس جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا کہ جو ڈیٹا سینٹر کا جو سرور ہے اس سے انڈیا کے اندر جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، جیسے کہ ان کی اپوزیشن ہے، ایکٹیوسٹ ہیں، یا کہ جو لوگ گورنمنٹ کے اگینسٹ بولتے ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں وہاں سے نکالے اور انڈین گورنمنٹ کو دے۔ زاٹکو کا کہنا ہے جی کہ لاسٹ منتھ اس نے جو میں نے کمپلینٹ کی تھی آپ لوگوں کو، وہ اس لیے کی تھی کہ ٹویٹر انڈیا نے اسپیسیفک لوگوں کو ہائر کر کے، جو کہ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ایجنٹس تھے، کیونکہ ٹویٹر کے بیسک جو آرکیٹیکچرل جو سسٹم ہے اس کے اندر فلوز ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سینسیٹیو ڈیٹا وہ وہاں سے اٹھانا چاہتے تھے، اور اس کی میں کہہ رہا ہوں بالکل اپنے کانشس میں کہ ٹویٹر نے اس کی پرمیشن دی تھی اس کو نوئنگلی، وچ از اے کرائم ان یو ایس اے، انہوں نے پرمیشن اس کی دی تھی کہ آپ یہ جو ہمارا انسوپروائزڈ سسٹم ہے اس کو آپ ایکسس کر کے جو مرضی آپ ڈیٹا لینا چاہیں وہ آپ لیں۔ اچھا اس میں جو سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی ہے اس نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ سارا کچھ کیسے فائنڈ آؤٹ کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ ٹویٹر کی لیگل ایک لڑائی چل رہی تھی انڈیا کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ کو انیشلی کیا تھا ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے جو ہے ان کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ کچھ اکاؤنٹس جو ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے اور اس طرح کے جو ہیں پروٹیسٹرز اور ڈائسنٹرز جو ہیں ان کے آپ ٹویٹرز بین اکاؤنٹس بین کر دے، تو ٹویٹر نے پہلے تو نہ کر دی، لیکن پھر گورنمنٹ کا ان کے اوپر اتنا بڑا وہ جو ہے وہ عذاب آیا کہ انہوں نے ان اپروپریٹلی بندے جو ہیں وہ کر کے ہائر کر کے ان اپروپریٹ इमीडिएटली उनको एक्सेस दे दिया कि भाई आप ये ले लें। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि इस चीज का कैसे तुम्हें पता चला, तुम्हें कैसे पता चला? वो ये कहता है जी मैं इन द हॉट ऑफ थिंग्स बैठा हुआ था और मुझे लग रहा था कि कुछ वहां पे गलती जा रही है। ट्विटर की देखें, ट्विटर जैसी कंपनी की कितनी बड़ी फ्लॉ है जो आज इसने यूएस सेनेट के सामने कहा कि अंदर से कोई आदमी अगर कोई डेटा चोरी कर रहा है तो दूसरे बंदे को पता ही नहीं चल सकता। ऐसे इनके प्रोटोकॉल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, सिली किस्म के, इतने उसमें फ्लॉज हैं। तो सिर्फ अगर कोई आउटसाइड एजेंट होता है तो वो बाहर से हैक इनका सिस्टम करके फाइंड आउट कर सकता है कि आपको अंदर से कोई हैक कर रहा है। अंदर सिस्टम में कोई बैठे ही नहीं हुए लोग जो कि फाइंड आउट करें कि कौन जो है डेटा उठा रहा है लोगों का और कौन हैक कर रहा है। तो कहते हैं मैंने एग्जैक्टली यही रूट किया और मैंने जब ऐसे करके पूछा तो मुझे पता चला कि जी ये इधर से सारा डेटा जो है प्राइवेट लोगों का वो यहां से लीक हो रहा है। वो कहते हैं जी कि मैंने जिस वक्त मुझे ये सारी चीजें पता चली, मैंने खुद ट्विटर के, उन्होंने कहा जी अच्छा तुमने फिर क्या किया? वो कहते हैं जी, अब ये बात सुनने वाली है इसकी जैटको की। वो कहते हैं जी जिस वक्त मुझे ये सारी बातें पता चली कि ट्विटर की लीडरशिप जो है पब्लिक को मिसलीड कर रही है, लॉ मेकर्स को, यूएस रेगुलेटर्स को, इवन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो मैं जो है ये सारी जो चीजें हैं ये लेके मैं ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स के पास गया। और ये बात मजे भाई आपको बड़ा हैरान करेगी जो कि आज वहां पे भी लोगों की आंखें खड़ी हुई। कहता है जिस वक्त मैंने ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स को बताया कि एक इंडियन एजेंट मुझे लग रहा है कि अंदर बैठा हुआ है और हमारा डाटा एक्सेस कर रहा है और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को लीक कर रहा है, तो उसने मुझे आगे से कहा कि अगर एक है तो इसका मतलब है और भी बहुत सारे होंगे, तो तुम चुप करके बैठो। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन अ कंपनी लाइक ट्विटर। अच्छा जी, ये सारा हुआ। अच्छा, अब इसमें जो यूएस लॉ मेकर्स हैं वो जब इसकी ये आज इन्होंने बात सुनी सारी, तो इन्होंने एक 12 सवालों का एक क्वेश्चनेयर जो है इमीडिएटली लिख के भेजा। ये जो अब इनके जो इंडियन वो जो सीईओ अब इन्होंने ट्विटर के बना दिए हैं पराग अग्रवाल साहब को जी इन्होंने भेजा और उन्होंने कहा जी पराग अग्रवाल साहब इस चीज का जवाब दें, आपके अंदर का बैठा हुआ आदमी आपका एक्स एम्प्लॉई जो है वो ये सारी बातें कर रहा है। तो पराग अग्रवाल साहब के पास जब ये उन्होंने लेटर भेजा तो उन्होंने कहा जी कि ये जो इनसाइडर थ्रेट्स हैं और ये जो फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आपके ट्विटर के अंदर चल रहे हैं इसका जवाब दें। तो पराग अग्रवाल साहब ने कहा कि ये बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं रेगुलेटर्स को और ये झूठ बोल रहे हैं और हमारे कोई सिस्टम्स ऐसे खराब नहीं है, सारे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं। अच्छा, उसके लिए फिर ये जो अब कमेटी है सेनेट जुडिशियल कमेटी, जुडिशरी कमेटी, उसने कहा जी कि अच्छा ठीक है, इसको पराग अग्रवाल को ये सीईओ जो है ट्विटर का उसको कहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको भी जुडिशरी कमेटी के आगे आना पड़ेगा और हमको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा, एज ऑफ टुडे, एज वी स्पीक नाउ टुडे, ट्यूजडे के दिन जो है ये पीटर जेडको को बुलाया है उन्होंने सेनेट कमेटी ने, और अब उन्होंने इनको अग्रवाल साहब को कहा है कि आप भी आके अब सेनेट कमेटी के पास जब इसकी क्वेश्चनिंग खत्म हो जाएगी तो आप आके हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे। तो अभी तक ये पता चला है कि इन्होंने उनको जवाब नहीं दिया है, लेकिन जाहिर है कि यूएस की सेनेट जुडिशरी कमेटी बुलाएगी तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो हमारा टीवी देख रहे हैं ये उनको देख सकते हैं, ये जो है सीईओ ट्विटर के पराग अग्रवाल उनकी भी तस्वीर देख सकते हैं वो पीटर जेटको के साथ, तो उनको भी अब बुलाया गया है और उनको कहा जी कि आप आके देंगे। तो सेनेट कमेटी ने कहा जी कि अब जब हम इनके साथ क्वेश्चनिंग खत्म कर लेंगे तो अग्रवाल साहब को बुलाएंगे और अग्रवाल साहब आके हमको अब सारी चीजें जो है ये क्लैरिफाई करेंगे। और इसी चीज के ऊपर इन्होंने कहा जी कि बार बार जो है ये एलॉन मस्क जो थे जो कह रहे थे कि ट्विटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं जो ये 44 बिलियन US डॉलर्स की जो डील कर रहा हूं मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि ये मुझे बता नहीं रहे हैं कि इनके प्रोटोकॉल्स जो हैं कितने सख्त हैं, तो आज ये पीटर जेटको ने जो सारा सेनेट कमेटी के सामने जो बात की है अमरीका में और कुछ दिन पहले भी जो उन्होंने की थी उसको ये सारा एंडोर्स करती है कि क्यों एलॉन मस्क जो है खुश नहीं है इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब इसके अंदर बहुत सारे बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं,
कटे खुलेंगे।
हाँ, तो अब इसके आज से ट्यूजडे से तो शुरू हो गई है जेटको की क्वेश्चनिंग जो है इसकी खत्म होगी तो ये पराग अग्रवाल को बुलाएंगे, उसकी खत्म होगी तो हो सकता है कि ये एलॉन मस्क को भी बुलाएं कि तुमने क्या सुना है या तुमने क्या देखा है कि तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी वो रोक दी थी, तुम व्हाई यू डिडंट मूव अहेड विद अ बाय आउट
जी ट्विटर,
हाँ विद ट्विटर बाय आउट, क्यों तुम तो ये जनाब ये भी बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली,
लंबी स्टोरी बनेगी,
ये लंबी अब स्टोरी चलेगी क्योंकि बहुत यहाँ पे इसमें बड़े बड़े लोग जो अब शामिल हो गए हैं जी।
हाँ जी,
तो ये हैं स्टोरियां बड़ी खतरे में नाक।
हाँ
ठीक है जी,
ये जो मिल्टन में जो हादसा हुआ,
हाँ, दैट वाज वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड।
अशरफ हमारे अपने कमेटी के
शकील अशरफ साहब
जो है
एमके मोटर्स,
दो बच्चे भी उनके,
तीन बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तीन बच्चे।
पहली रिपोर्ट जब हमारे पास आई थी
उसमें दो थे, लेकिन तीन है।
तीन बच्चे हैं उनके। अल्लाह सुब्हान ताला उनकी फैमिली को सब्र तहम्मुल अता फरमाए। और यंग, he was only 38 years old.
और बड़े एक्टिव थे वो मिल्टन की कम्युनिटी में।
यस, क्रिकेट की लीग चला रहे थे 7 साल से। एंड बड़ा अफसोस का काम है कि वो रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। एंड अभी ज्यादातर स्टोरीज बाहर आई नहीं है, और हो सकता है ना भी आए, क्योंकि जो सस्पेक्ट था उसको मार दिया गया। तो अब आगे कौन बताएगा क्या है, क्या रिलेशन था इनका, क्यों वो इन पे गुस्से पे आया कि इतना गुस्सा आ गया कि वो जो है वो अच्छा, वो जो शख्स था उसका तो नाम भी मुझे नहीं पता अभी, वो जो शख्स जिसने ये सारा हंगामा किया है, तो वो शख्स जो है वो, अब आप देखें कि ये जो एंड्रू यंग, एंड्रू चैंग जो है वो ऑफिसर कांस्टेबल जो थे, वो अपने दोस्तों के साथ, हालांकि ही इज फ्रॉम टोरंटो पुलिस, तो वहां से वो गए थे मिल्टन में एक ट्रेनिंग सेशन के लिए, कि अपने मोटर बाइक के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका एक सेशन, उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग सेशन लगाया था और वहां गए थे। और उसके बाद पे लंच पे ये लोग अर्जेंटिया एंड विंस्टन चर्चिल पे जो जो टिम हॉर्टन्स है उस टिम हॉर्टन्स में बैठे अपना लंच कर रहे थे। सो दिस पर्सन केम देयर और बड़े क्लोज रेंज में उसको, हालांकि पता है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्लोज रेंज में उसने ऑफिसर को शूट किया है। ऑन द स्पॉट ही डाइड। एंड द सेकंड थिंग इज दैट ही वाज ट्राइंग टू, उनके जो ऑफिसर की गन जो है ना वो भी छीनने के चक्कर में था। वो हुआ नहीं, उससे हो नहीं सका, तो वो जो है वहां से भाग के जो चुराई हुई गाड़ी थी जीप चैरो की ब्लैक कलर की, उसमें वो फरार हो गया। और फरार होके भी यहां से लेके मिल्टन से लेके वो आपका अल्लाह भला करे ऑल द वे टू हैमिल्टन पहुंच गया
जी,
और वहां के ग्रेव यार्ड में पहुंचाया, और वहां पर फिर उसको चार ऑफिसर्स ने शूट करके उसको मारा है। तो वहां पर भी हो सकता है कि उसने भी वहां से शूट किया हो, और दैट्स व्हाई दीज पुलिस ऑफिसर जो है हमारे, उन्होंने जो है उसको ओपन फायर एंड शॉट हिम एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। बट उसकी अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका जो है वो नहीं हुआ कुछ,
जो उसका क्वेश्चनिंग नहीं कर सके,
कि क्या मोटिव क्या था तुम्हारा, कि व्हाई डिड यू डू ऑल दीज थिंग्स। तो अब जो लोग जख्मी है उस एमके मोटर्स में, एमके ऑटोमोटिव में जो लोग जख्मी है,
दो कह रहे हैं जख्मी,
हाँ, तो उनसे अब कुछ हो सकता है, इनसे कुछ
बात पता चल सके,
बात निकले क्योंकि ये वहां का एम्प्लॉई था, वहां काम करता था, और उसके बाद जाके उसने ये सब कुछ किया है। तो वेरी सैड न्यूज, ऑल माय कंडोलेंसेज और आर कंडोलेंसेज टू अशरफ फैमिली। एंड यू नो दैट
पुलिस हैज इशूड, ये जिब्रील एलमी के लिए इन्होंने जो है एक वो किया है, अब ये जिब्रील एमरी जो है ये किस शूटिंग में इन्वॉल्व है इसका नहीं अभी
देखिए। अब पिछले दिनों में
सस्पेक्ट वो कह रहे हैं,
कंडोलेंसेस टू कांस्टेबल एंड्रयू हॉन्ग
जी,
एंड्रयू हॉन्ग के भी यू नो व्हाट 770 की तरफ से पूरी कंडोलेंसेस की फैमिली को। ही इज वेरी यंग अगेन, ही इज ओनली व्हाट 48 40s में है, मिड 40s में इनकी उम्र है, इनके भी बच्चे हैं। एंड वेरी सैड। हम तो अब पता क्या, अब हमारा एटीट्यूड ये हो गया है कि अगर हमारे शहर में एक दो लोग मर जाते हैं,
इनसेंसिटिव हम हो गए हैं,
तो उसमें कोई बड़ी बात नजर नहीं आती,
नहीं आ रही, वही
ना। एक जमाने में अगर एक मर्डर होता था तो एक हफ्ते तक उसकी हेडलाइंस होती थी, है ना। अब उसमें तो पता नहीं कितने मर्डर्स होते हैं अभी। अभी उस दिन देखे, मैं घर से जब निकला तो मैं न्यूज देखी, वो सुबह सुबह की न्यूज जो होती है मैं देखता हूँ, तो वो उस न्यूज में मैंने देखा कि वीकेंड पे 8 लोगों को شوٹ کر کے انہوں نے زخمی کیا. ان میں سے ایک 15 سال کا بچہ جو ہے ہی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ. ابھی وہ نیوز سن کے آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے پتا لگا کہ برامپٹن میں ایک شوٹنگ کا واقعہ ہوا ہے کہ وہ اپنے ڈرائیور میں بیٹھا تھا اینڈ گاڑی کے اندر اور وہاں آ کے اس کو شوٹ کر دیا. ابھی وہ اسٹوری کی تحقیق کرتا ہوا میں جب یہاں پہنچا اپنے آفس میں تو یہاں ہمیں پتا لگا کہ بھائی ایک شوٹر جو ہے وہ ایکٹیو شوٹر ہے نا. ہمیں بھی ایمرجنسی الرٹ آئی تھی سب کو کہ بھائی ڈونٹ ٹرائی ٹو گو کلوز ٹو دس پرسن از ویری ڈینجرس اینڈ آرمڈ. سو وہاں سے وہ وہاں کنٹینیو ہو گئی. تو یہ آن اے ڈیلی بیسز یو ہیئر
بڑھ گئے ہیں سٹوریز, بڑھ گئے ہیں
بہت زیادہ. جیسے ہمارے فورٹ صاحب نے کہا نا کہ دیز آر سینس لیس, ہی از رائٹ, دیز آر سینس لیس.
لیکن مجید بھائی پتہ کیا بات ہے کہ جو پینڈیمک ہے نا اس کے بیچ میں بہت سارے لوگوں کے پاس جابز نہیں رہی ہیں, یو نو, اور وہ جابز نہیں رہی ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, جوان لڑکے جو ہیں, اور پھر وہ جس وقت ایسے باہر نکلتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر رہے ہیں. اتنا دماغ لوگوں کا خراب ہوا ہوا ہے. وہی بات ہے وہ جو ہم نے ادھر 1000 کوئی دفعہ بات کر چکے ہیں, لوگوں کی تھوڑی سیلریز بڑھا دیں, تھوڑے بینیفٹس بڑھا دیں, لوگوں کو جابز پہ لگا دیں, جابز پہ. جس وقت کاموں پہ جائیں گے نا لوگ, دیکھیں مجھے بھائی پتہ کیا ہوتا ہے, جس وقت جیسے فار ایگزامپل بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا اور ہم ان کنٹریز میں آتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈرایا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ تو ڈرگز بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی چیز ہیں. لیکن اگر آپ نے بچوں کو ایسے چینلائز کر دیا نا, اسکول سے آئے ہیں, گیمس پہ چلے گئے ہیں, گیم سے کھیل کے آئیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ کے اپنا نہائیں گے, دھوئیں گے, کھانا پینا کھا کے ہوم ورک وغیرہ کریں گے, وہ اتنا پورے سرکل میں, اور آلریڈی صبح اسکول گئے ہوئے تھے, اتنا پورے سرکل میں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ دے ول اونلی سلیپ دین. تو اس لیے جو یہ جو ایڈلٹ ہے, یہ تو بچہ ہے, ایڈلٹ جو ہے اس کو جس وقت تک آپ اس کی جابس پہ نہیں لگائیں گے.
نہیں مگر آپ شروع سے دیکھیں نا, جب آپ نے بات شروع کی نا, وہ یہی ہے کہ ہاں اس وقت سے اس کو آپ نے گرو کرنا ہے.
ہاں ہاں وہی تو
وہ جو ہے وہ بچے بھی ہمارے animals, not a very good example, but it is like animal ke animal
untamed, yani hum keh sakte hain na unko, to aapne unko tame karna hai, right,
jis tarike se aap jis line pe dalenge, jis tarike se aap unko karenge, main to dekha hai ki 6 saal ka bachcha jo hai wo hafiz e quran ho gaya,
ji ji,
you know, to wo یہ آپ جس طریقے سے ان کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو حافظ بنا دیں آپ, نہیں, مگر بچے کو انسان بنائیں,
ان کی انرجیز جو ہے نا ان کو پازیٹو چیزوں میں لگائیں,
اس کو بچے کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائیں,
بکس پڑھنے پہ لگائیں اور اس طرح کی کریٹو چیزوں میں لگائیں,
کریٹو چیزوں پہ لگائیں ان کو.
ہر وقت وہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس پہ آئی پیڈز پہ ادھر ادھر بیٹھے ہیں یا کہ فضول باتیں ہی کر رہے ہیں. اچھا چلو جی ہم نے جی بڑی سختی بچوں پہ کی ہوئی ہے, ان کو آئی پیڈز نہیں دیے ہوئے, بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں سینس لیسلی, یو نو. میں مطلب آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی تھنگ, مگر یو نو تھنگس لائک فرینڈس دیکھ رہے ہیں, بس بیٹھے ہی ہوئے ہیں, دیکھتے ہی جا رہے ہیں, دیکھتے ہی جا رہے ہیں. بھائی اب اس نے کتنا گیان دینا ہے اس بچے کو, ہے نا, اور بلکہ اس میں سے وہ کوئی پتہ نہیں کوئی عجیب اس کا دماغ, بچے کا دماغ ہے نا, کسی اور بھی طرف جا سکتا ہے.
Exactly.
اس کو آپ بھائی کوئی ایسی چیز پہ لگائیں, چلو اس کو بولیں یار تم کرکٹ کھیلو جا کے, ہے نا, 2 گھنٹے جا کے جاؤ کرکٹ کھیلو تم, یا تم جاؤ 2 گھنٹے جا کے تم ساکر کھیلو, یا جاؤ تم جا کے, وہ جب ساکر یا کرکٹ یا کوئی گیم کھیل کے آئے گا نا, وہ اتنا تھکا ہوا ہوگا, اس نے نہانا ہے, ماں کو کہنا کھانا دے, کوئی اپنا کوئی ہوم ورک کرے گا اور وہ سو جائے گا, اس کے پاس ٹائم نہیں, یا اس کو بک کوئی دیں بچے کو. اچھا یہ میں نے بڑی پرابلم بچوں میں دیکھی ہے,
لکھنے کا آپ ان کو شروع سے
بکس پڑھنے کے لیے تو کہتے ہی نہیں ہے ماں باپ,
ہاں, نہ بکس پڑھنا, نہ بکس پڑھنا نہ لکھنا. کہ آپ جیسے آپ نے کوئی اچھی بک پڑھی ہے تو اس پہ آپ لکھیں گے کیا چیز آپ کو سمجھ میں آئی, کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے مطابق.
اور اسی لیے ماجد بھائی میں دیکھتی ہوں یہ جو سارے بچے, ایک زمانہ تھا کوئی آج سے 4 سال پہلے جو تھا, وہ بچے آتے تھے ای میل ایک نہیں لکھنی آتی ہے, کینیڈا کے پڑھے ہوئے ہیں, کینیڈا کے پڑھے ہوئے ہیں, اور میں ان سے پوچھتی تھی تم لوگ کیا پڑھے ہو یہاں پہ, یہ ایک انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے, اس کے اندر تم کو انگریزی لکھنی نہیں آتی, مطلب آپ دیکھیں نا کتنے, اور ڈگریاں لے کر آئے ہوئے ہیں, او جی میں اس کالج میں پڑھتا تھا تو میں اس میں تھا تو میں اس میں تھا, بھائی تم نے کیا پڑھائی کی ہے کہ تمہیں ایک سمپل ای میل نہیں لکھنی آتی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے پڑھ نہیں رہے ہیں, ان کی ووکیبولری نہیں ہے, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ اے سینٹینس, اور انتہائی غلط قسم کی انگریزی انہوں نے سیکھی ہوئی ہے, اور وہ اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم, اچھا اس میں بھی ڈفرنس نہیں کر رہے بچے کہ جو کلوکوئل انگلش ہے یا کلوکوئل جو لینگویج ہے, دیٹ انگلش از ڈفرنٹ فرام دا ریٹن انگلش, رائٹ. تو ان کو بچوں کو چونکہ وہ پڑھ نہیں رہے, کوئی کلاسکس نہیں پڑھ رہے, کوئی چیز نہیں پڑھ رہے, ان کو ڈفرنس ہی نہیں پتا ہے کہ جی जो कोलोक्वियल इंग्लिश है, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम द रिटन इंग्लिश? हाई गाइज हम कहते हैं, मैं खुद कभी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती हूँ तो मैं कहती हूँ गाइज दिस इज व्हाट्स कमिंग अप एंड ऑल दैट, लेकिन बट व्हेन यू आर राइटिंग यू विल नॉट राइट हाई गाइज, यू कैन नॉट राइट दैट राइट
एग्जैक्टली.
तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड.
हमारे साथ कॉलर भी हैं जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
हेलो वालेकुम अस्सलाम. आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, और पेरेंट को ये भी चाहिए कि जो है ना कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन के मेंबर भी बने.
किसके मेंबर?
मंथ होती पेरेंट टीचर एसोसिएशन के मेंबर बने स्कूल के. और एक चीज और है कि शादिया साहब ने एक वो आर्टिकल पढ़ा था ना फराज जलाल का, वो जो मैंने
जलाल नहीं फराज जान है जी उसका नाम,
और फराज जान अच्छा जो भी है ना जिन्होंने भी कहा ना मैंने जलाल मैंने कमेंट किए हैं, उन्होंने जो है ना आधा सच बोला जो कि झूठ से भी खतरनाक होता है. कायदे आजम की आप जो है ना 1 जुलाई 1948 की स्टेट बैंक की जब उन्होंने इनॉग्रेशन की तो वो स्पीच सुन ले, और 1944 में कहा मैं किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था पाकिस्तान का आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उन्होंने कहा था जी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें 1350 साल पहले मिल गया हुआ है, और कायदे आजम साहब ने पहले थे कि इस्लामिक रिपब्लिक वो बनाया था जिसके असद थे ना जो जिन्हें पहला पासपोर्ट मिला था पाकिस्तान का, जर्मन थे वो जिन्हें रोड टू मक्का भी लिखी हुई है, उन्होंने को बनाया था कि ये ने इसके डिस्कस करे कि ये जो हमारा सरमाया दाराना नमाज के निजाम की वजह से दुनिया मुसीबत में है, दो जंगे भी हुई हैं, तो ये कैसे पाकिस्तान को नहीं दुनिया को जो है ना इस्लामी मईशत के तरफ से बचाया जाए. तो प्लीज वो जो आर्टिकल आपने पढ़ा है ना आपकी बड़ी मेहरबानी,
लेकिन आप वो तो मैं बताना चाहता हूँ कर रहे हैं आर्टिकल किसी और चीज पे, आप किसी और
नहीं 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 आपने नहीं मैं जो बात कर रहा मैं आप पे नहीं, आपने अच्छा किया बताया तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो उसने आधा सच बोला है आधा सच जो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक है. काजल नहीं नहीं अच्छा एक चीज और सुन ले, नहीं नो नो ना करे, ये हूद भाई है ना परवेज हूद भाई उन्होंने भी कंफर्म किया है ये लिख रहे कि कायदे ने सेकुलर का लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं किया,
उन्होंने एक्चुअली किया था कि ही वांटेड पाकिस्तान टू बी
मेरी बात
इस्लाम से बड़ा सेक्युलर रिलीजन दुनिया में कोई नहीं है सर. आपको सेक्युलर का मतलब सेक्युलर का मतलब दहरिया नहीं है, सेक्युलर का मतलब है ऐसा कंट्री जिसमें इक्वालिटी से चलता है.
सुन ले आप प्लीज आप एक बात सुन ले, ये कई लोग कहते हैं जी कायदे ने सेक्युलर का लफ्ज इस्तेमाल करा, कायदे ने जिंदगी में कभी भी सेक्युलर.
अच्छा उनकी वो स्पीच सुनाएंगे सर आपको हम इंशाल्लाह, स्पीच सुनाएंगे उनकी आपको यहाँ पे.
हाँ बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये सेक्युलर का लफ्ज उन्होंने कभी नहीं कहा.
जी 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 ठीक है,
आप भी गलतफहमी है.
नहीं नहीं बिल्कुल गलत,
अपने आप को ये करेक्ट करें, नहीं ये ना कहेगा कि हम ये जब कराए ना, लेकिन मैं आपकी एक दाद देता हूँ, आप जो है ना वो जो आते हैं वुफतुल्ला खान को उनको आपने स्नप किया था वो झूठ बोलते हैं, आसा बहन जो ना वो उनमें जुरत नहीं उन्हें करने की.
नहीं मैंने उनको सिर्फ करेक्ट किया था, वो कुछ चीजें मिक्स कर रहे थे तो मैंने उनको
नहीं
वो
नहीं झूठ बोल रहे थे.
नहीं नहीं हम ऐसे नहीं कह सकते सर, सीनियर लोगों को हम नहीं कह सकते आप झूठ बोल रहे हैं,
लेकिन वो मान नहीं रहे थे, वो मान नहीं रहे थे.
जी 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 जी
बहुत शुक्रिया.
माजे जमाल साहब ने कहा नहीं ये ऐसे लोगों ये मर्जाई है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, प्लीज इनसे एहतियात करें.
बहुत शुक्रिया,
बहुत मेहरबानी.
मेहरबानी नहीं नहीं कोई मिर्जाई वगैरह नहीं है, कोई कुछ हाँ, नहीं है, और ऐसा कोई नहीं कर सकता.
और पाकिस्तान पे हर किसी का हक है जी, जो है वो चाहे कोई भी है, हर किसी का हक है पाकिस्तान पे. हाँ, पाकिस्तान जो है वो ये नहीं है कि वो एक स्पेशल सेक्ट के लिए बनाया गया, वो सबके लिए बनाया गया था. और मैंने तो भी उनकी स्पीच सुना दी है जिना साहब की कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स टू योर चर्चेज टू योर मॉस्क, जिस कास्ट क्रीड के आप हैं यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन. यही उनकी स्पीच थी 1948 की, यू कॉन्ट रियली डिनाई दिस. हाँ जी एक और हमारे पास है कॉलर.
हेलो जी.
जी जी
और की हाल चाल है?
ठीक है सर, ना दसो अपना.
ओ ना यार ना की पूछ के करना, सैमी है मेरा ना, ते मैं तो सिर्फ इस करके यार को तोड़ा रेडियो कभी कभी शामी जानना ना लगा लेना, ते मैं कह रहा मेरी हासिल की मशीन अज केड़े चक्कर च पै गई है, मेरे को तेरे पुठियां पुठियां गल्लां च पै गई है.
नहीं नहीं सर बड़ियां इंपॉर्टेंट आईयां या सन स्पेशल रिपोर्ट्स से सी क्या सी ओ सुनाइए लोगों नु.
आई नो नहीं नहीं ठीक है फिर कई ना ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਹਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ ਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ,
ਆਮੀਨ,
ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ,
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੈਮੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਨੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ
ਹਾਲ ਖੈਰੀਅਤ,
ਹਾਂ ਆਪਕੋ
ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ, ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਆਪਕਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜਦ ਭਾਈ, ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਮ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਔਰ ਹਮ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਯੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਧਰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਬਟ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ। ਅਬ ਦੇਖੇ ਆਪਕੇ, ਜੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੋ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਯੇ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੇਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਝੁਕੋ ਝੁਕਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਯੇ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੇਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਆਪਨੇ ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਆਪਕਾ, ਝੁਕੋ ਝੁਕਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਗੇ ਮੇਰੀ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਮ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕਰੋ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਬ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗੀ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੇ ਐਸੇ ਵੋ ਕਰੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਵਡੇਰੇ ਥੇ, ਵੋ ਵਡੇਰੇ ਵੋ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਯੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ੇਰੇ ਥੇ, ਉਨਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਵੋ ਕਿ ਯੇ ਤੋ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੁਕੋ ਝੁਕਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਯਾਨੀ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਆਗੇ ਝੁਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਹਮ ਬੜੇ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਯੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੋ ਸਪੀਚਸ ਹੈ, ਵੋ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਮ ਕੈਸੇ ਉਨਕੋ ਚੇਂਜ ਕਰੇਂਗੇ ਭਾਈ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦਿਸ। ਹੈਲੋ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਆਪ?
ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਂ?
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਸੀ ਮਰਦ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
ਮੈਂ ਕਾਸੀ ਮਾਜੀ ਭਾਈ ਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਸਰ।
ਮੈਂ ਬਸ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਕਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੁਣਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਜੋ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਆਪਨੇ ਜੋ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੀ ਏਕ ਸੈਕਟ ਕੇ ਲੀਏ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬਨਾ।
ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਮ ਕੌਣ ਹੋਤੇ ਹੈ ਯੇ ਕਹਨੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋ ਬਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੋ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਪ
ਥੈਂਕ ਯੂ,
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
ਥੈਂਕ ਯੂ,
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਯੇ ਲੋਕ ਕਲਰ, ਰੇਸ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਪੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ
ਦੇ ਆਰ ਡੂਮਡ,
ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ,
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਦੇਖੇ ਮਾਜੀ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਚਲੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਕੀ ਨਾ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਆਪ ਦੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਜੀ ਭਾਈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀ ਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਤੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਤੇ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਹਾ ਆਪਕੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਕੋ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਜੁਮੇ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਤੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਰੋਕਤੇ ਨਾ ਮਾਜੀ ਭਾਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ, ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਯਹੀ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਮਾਜਦ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਤੋ ਵਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਵੋ ਫਰਾ ਜਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਂ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈਂ, ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੇ ਹਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਮਾਜਦ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਰਾਮ ਹਮਨੇ ਕਮਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਕਹੇਗਾ ਵੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਮਜ਼ਾ ਬਈ, ਆਪ ਹਰਾਮ ਕੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸੂਦ ਕਾ ਆਪਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਫਿਰ ਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਪਾਂਚ ਵਕਤ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਟਖਨੋ ਸੇ ਊਚੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਕੋ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਪ, ਆਈ ਮੀਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ,
ਮੁਨਾਫਿਕਤ,
ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੋ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕਤ, ਯੇ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਹਰ ਬਾਤ ਮੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤੋਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ, ਅੱਛਾ ਯੇ ਆਪ ਰਸੂਲ ਕੀ ਲਾਈਫ ਕੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅਨਟਿਲ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮੌਤ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਂ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈਂ,
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯੇ ਕਿ ਦੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈਂ।
ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਚਲੋ ਸੱਚ ਕੋ ਛੁਪਾ ਲੇਤੇ ਹੈਂ ਉਸ ਮੇਂ, ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈਂ,
ਸਹੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਰਾਈਟ, ਹਮ ਹਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨਾ ਬੇਚਾਰਾ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਹਮ ਹੱਕ ਖਾ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਯਤੀਮੋ ਕੇ ਹਮ ਹੱਕ ਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਹਮ ਜੋ ਹੈ, ਤੋ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਸਲਾਮ, ਯੇ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਯੇ ਹਮ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਹਮ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨਕੇ ਉਪਰ, ਤੋ ਯੇ ਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਯੇ ਸਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ, ਯੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਜਦ ਭਾਈ,
ਫਿਰ
ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਮ ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਤੋ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਬੈਡ ਨੇਮ,
ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੇ ਕਹਾ ਹੈ,
ਸਰ ਯੂ ਆਰ
تو اس میں شروع میرا یہ ہوتا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو انسان بنائیں پھر مسلمان بنائیں.
بالکل.
تو لوگوں نے مجھ پہ کافر کا فتویٰ دے دیا تھا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں.
یہ تو ہر سکالر کہتا ہے, یہ تو ہر سکالر.
میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کوئی سکالر کہتا ہے. میں ہمیشہ میرے دل کی زبان تھی یہ, اور میں یہ کہتا تھا کہ اپنے آپ کو پہلے اچھا انسان بنائیں, اس کے بعد پھر مسلمان وغیرہ جو کچھ بننا ہے آپ نے, ہے نا. کیونکہ کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ آپ کو کبھی غلط بات نہیں سکھاتا ہے.
نہیں نہیں,
کوئی کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں سکھاتا ہے. تو آپ جو ہے پہلے اچھے ایک انسان بن جائیں.
ایگزیکٹلی.
انسان کا کیا ہے, پھر وہ انسان جو ہے ہر ایک کا
خیال کرے گا نا,
وہ خیال کرے گا, چاہے وہ انسان ہو, وہ
گورا ہے, کالا ہے, جیسا بھی ہے, پھر
کیسا بھی ہے, وہ ہر چیز کا کرے گا. جی ہلو, السلام علیکم.
السلام علیکم ماجد صاحب. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر
جی جی, اسلام جو ہے سر دین فطرت ہے, اور اسلام آپ کو سب سے پہلے حقوق والے بات سکھاتا ہے.
ایبسولیوٹلی, بالکل بالکل.
اگر آپ یہ نہیں کرتے, باقی جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں, لیکن وہ تو اللہ کے حقوق ہیں. اللہ آپ کو ہو سکتا ہے معاف کر دیں, اس کی مرضی, اس کی ڈسکریشن پہ ہے. لیکن اگر آپ حقوق والے بات, اور اسلام دین فطرت ہے, اگر آپ کا ضمیر کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا تو وہ اگینسٹ فطرت ہے, وہ چیز نہ کرے. لیکن ہمارے ان سب چیزوں کو جو آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے, وہ آپ نے اجازت پہن, جو آپ نے بات کی, حرام کما کے, حرام کھا کے, پیٹ میں کیا جا رہا ہے, بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں, اور حج اور روزی اور زکات اور یہ سب.
بالکل بالکل, ایبسولیوٹلی ایبسولیوٹلی. اور یہ تو اس کا تو حکم بھی ہے جی, کہ رب جو ہے وہ اپنے, تو اگر چاہے تو رب ہے نا جی, وہ تو رب ہے, وہ تو اللہ ہے, وہ اگر اپنے چاہے تو حقوق معاف کر سکتا ہے, لیکن حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ اس کو معافی نہ دے دے.
تو میرے خیال میں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہونا بھی بہت ضروری ہے.
مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو انسان کا بچہ ہے جی, جو انسان کا بچہ نہیں ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہم نے کسی فرقے کے اوپر جی, فرقہ اے, فرقہ بی, فرقہ سی, فرقہ ڈی, یا کوئی اسلام کے, اسلام اسلام ہے, کوئی فرقے نہیں ہیں. اور ہمارے سامنے اگزامپل کوئی ملا عمر کی یا کسی مولوی کی نہیں ہے, ہمارے سامنے صرف اگزامپل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دیٹس اٹ. ہم نے صرف محمد رسول اللہ کو فالو کرنا ہے بس.
کیونکہ کوئی کسی ایک فرقے کو فالو کرتا ہے, بے شک کرے, وہ تو اپنے اعمال کا خود.
ہاں ہاں, ایک ہی اسلام ہے, اور اس کی اگزامپل صرف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم. دیٹس اٹ.
ہم اپنے فکر کیوں نہیں کرتے.
بالکل صحیح.
بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی آپ کی. 100% یو رائٹ.
ہاں, ہمارے مسجد بھائی ادھر, یعنی کہ وہ جی ذیشان سے پوچھ لو, جی شازیہ جی سے پوچھ لو, کیوں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے ہمارے سامنے, ان کو فالو کریں بھائی, ان کو فالو کریں. کسی مولوی سے فلانے ٹمکانے مولوی, اس مولوی, کسی مولوی کو, کسی زیارت پہ جانے, وہ جی اس, آپ زیارت پہ جائیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ. بھائی وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس سے ڈائریکٹلی مانگو.
وہ والا ٹاپک نہ چھیڑیں, کیونکہ وہ والا ٹاپک جو ہے میرے لیے پھر وہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا اس پہ. وہ والا ٹاپک نہ چھیڑیں.
مطلب سمپل ہے کہ رب سے مانگو اور رسول کی زندگی پہ چلو, بس دیٹس اٹ, سمپل.
ہلو, السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. ماجد بھائی بات کر رہے ہیں؟
جی جی جی, فرمائیے, کون بات کر رہے ہیں؟
ماجد بھائی, آپ کے اوپر میں نے لیبل لگا ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں تو گانے سننے. عارفہ باجی بیٹھی ہیں تو اس ٹائم ہم نے جو ہے فلاسفی سننی ہے, اور جب یہ شازیہ جی ہوں اس ٹائم ہم نے دنیا بھر کی جو نیوز سننی ہے.
بٹ یہ ہو گیا,
شازیہ جی آپ نے کہا کہ کسی کو فالو نہیں کریں تو پھر ہم ڈیزل کہاں سے لیں گے؟ بس اتنا ہی بولنے کے لیے میں نے فون کیا تھا کہ ہمارا ڈیزل تو بنتا کرے گا.
جی بالکل بالکل, ڈیزل ضرور فالو کریں.
بہت شکریہ,
لیکن اس سے آپ کو فیض نہیں ملے گا.
ویسے انہوں نے بات پتے کی,
بات بڑی اندر کی ہے,
بات بڑی پتے کی ہے.
Those who can read between the lines.
ہاں, اگر ہم نے فالو نہیں کیا تو ڈیزل
ڈیزل کہاں سے
آپ کو بند ہو جائے گا,
آپ کا
ڈیزل بند ہو جائے گا. ڈیزل بند نہ کرائے جی. ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام حضرت, کیا حال ہے؟
حضرت میں ایک دم صحیح ہوں سر, آپ کیسے ہو؟
میں خیریت سے, امید دی. آپ بھی بما شازیہ اور وہ جو پروگرام کے مین ہیڈ سپریم کورٹ ہے وہ بھی خیریت سے ہوں.
لاہور کورٹ,
یہ تو سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں ہوں, اور وہ جو ہے وہ
باجی ذرا خاموش رہے, میرا نام تو پوچھنے دے. ماجد جو سارے بولے بالے, پہلے ان کو پوری ریکوائرمنٹ تو پوری کرنے دیں.
ہاں جی, کون بات کر رہے ہیں سر؟
میں بات کر رہا ہوں,
میں بات کر رہا ہوں.
आप शादिया बाजी आप इतना प्यारा मुस्कुराती है, जी चाहता है कि चांद क्यों ना देखे आपको देखते रहे।
माय गॉड, तुसी कुछ ज्यादा ही छोड़ देती है लंबी।
आपका परछाया पड़ गया है बाजी, आर बाबे ने पढ़ाई है, दिन ब दिन खूबसूरत हो रहे हैं।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
बाल लग गए ना तो हमारे मुर्शिद इमरान खान की तरह लगेंगे।
अब ये कौन से इमरान खान है जो कि ग्रिल एंड हट वाले हैं?
इनको मुर्शिद के साथ मिनिस्टर बनाएंगे, इतने बोले हैं।
बहुत शुक्रिया सर, बड़ी
नाम अगर गुजरा वाले में होना इनका नाम लिखा जाएगा, बोले जमाल शाह था।
वाकई बहुत बोले हैं, बहुत बोले हैं।
जो आपका मौजू है
जी, जी।
काजी आप सुने, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। आप जेरे साया जो ना, अब मेरी आपारफा के जेरे जेरे साया रह रहा के ना, आप भी बहुत नाइस हो गई उनकी तरह।
अच्छा जी,
बहुत मेहरबानी सर।
आप जब सुने पूरी बात तो सुन लेना, आप जब मुस्कुराती है तो गुलाब से फूल खिलते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा,
पाते ऐसे उठाएंगे। जिसकी माँ जिंदा है ना, जिसकी माँ जिंदा है, अगर खुद अल्लाह पाक, अल्लाह करीम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसकी माँ जिंदा है, उसको पामे मारा मजहब हो किसी का भी हो, उसको किसी के आगे हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। वो माँ
सही का
याद उठा दे, दुनिया की हर नेमत उसको मिलेगी।
बहुत सही का,
बिल्कुल ठीक,
बहुत सही का।
क्योंकि माजे जमाल साहब फिर इंशाल्लाह बाकी आंदा किस पे बात हो।
बहुत ठीक है जी, ठीक है, बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, आपने सही कहा। और ये एक, ये मेरे भाई साहब जो है, मुझे इनका नाम नहीं पता, मगर ये कि जो मेरे भाई साहब जो है, इन्होंने एक जो आखिर में बात कह दी ना,
हाँ।
कि जिसकी माँ जिंदा है
और उसने माँ की खिदमत कर ली
तो उसको और
किसी,
तो मैं सारे अपने बहन भाइयों को, बाज दफा होता है कि नाराजगी हो जाती है, मगर कुरान में ये कहा गया है कि उफ भी ना करो
पेरेंट्स को, पेरेंट्स को या
अपने वालदैन को, उफ उफ छोटी सी चीज होती ना, उफ भी ना करो, क्योंकि वो जो है वो चाहे कुछ भी कह दें वो गलत नहीं कह सकते, अनलेस वो आपको शिर्क का कुछ कह कहें, उस पर आपको अमल करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं कहता हूं कि वो बदनसीब लोग हैं जिनके वालदैन जिंदा हैं और वो उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं, है ना, कि वो जी वो मेरी बीवी की वजह से मेरे वालदैन से मेरी लड़ाई हो गई,
लॉन्ग टर्म होम में छोड़ा हुआ है,
लॉन्ग टर्म होम में छोड़ा हुआ है, या आप उनकी वो बास लोग तो ये बड़े फख्र से कहते हैं कि यार मैं तो $2,000 उन पे स्पेंड करता हूँ कि लॉन्ग टर्म पे
उनका, इतना हाई एंड लॉन्ग टर्म पे रखा हुआ है मैंने उनको,
इज एब्सोल्युटली रॉन्ग,
नॉनसेंस।
अगर आपके वालदैन जिंदा है, यू आर द लकीस्ट पीपल, लकीस्ट पीपल कि आपके वालदैन जिंदा है और आप उनकी खिदमत करके जो कमाना है कमाएं, जिंदगी में भी कमाएंगे आखिरत में भी कमाएंगे आप सर। तो एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब और क्या कहेंगे आप?
हाँ जी, बस मजीद भाई यही है कि मैं ये बात तो हमेशा यही कहती हूँ कि भाई हमारे लिए तो एक ही रोल मॉडल है और वो प्रॉफिट की जात है, बस प्रॉफिट के ऊपर जो है उनके आप वो पढ़ें, और उनकी दो चार चीजों के ऊपर भी अगर आप जो है अपनी लाइफ गुजार लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान बन सकते हैं वैसे। लेकिन अगर आपने मुलाओं की बातें सुननी है, इधर उधर के लोगों की सुननी है, तो फिर अल्लाह ही रहम कर सकते हैं। अच्छा जी, हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज बात बताना चाहते हैं, और वो ये है कि इस फ्राइडे को माजिद भाई हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, जो फ्लड रिलीफ का काम जो है वो हमारा तो अब थोड़ा खत्म की तरफ जा रहा है, लेकिन इंडस हॉस्पिटल हमारे साथ इस फ्राइडे को 4 से 6 के बीच में करेंगे फंड रेजिंग पाकिस्तान के जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए। तो प्लीज आप लोग जो है दिल खोल के फिर से एहतियात दें। इंडस हॉस्पिटल जो है वो ये आपको जो फ्राइडे को आपके साथ हम जो जुड़ेंगे उसके अंदर जो है नुमान एजाज होंगे हमारे साथ, और हम बात करने की कोशिश करेंगे अब्दुल बारी खान से जो कि CEO हैं, और उनके साथ, और एक वो अपील करेंगे यहां पे कि आप उनको जो है जाहिर है कि पैसे आप उनको ट्रांसफर करें ताकि वो चीजें जो भी कोई भिजवा रहे हैं वो करें। तो इस फ्राइडे को मैं आपको फिर से बार बार बता रही हूं, इंडस हॉस्पिटल वाले जो है हमारे साथ फंड रेजर करेंगे 4 से 6 के बीच में। तो प्लीज आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ें और इसमें आप जो है हिस्सा लें। और मजद भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फंड रेजर, فرائیڈے کی, تو اس کے اندر جو ہے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, اور آپ نعمان اعجاز صاحب آئیں گے ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیو میں, اور بھی کچھ انڈس ہاسپٹل کے آفیشلز آ سکتے ہیں. تو آپ
ٹائم اور دن ایک دفعہ بتا دیں.
فرائیڈے 4 to 6, فرائیڈے 4 to 6,
فرائیڈے 4 to 6.
جی فرائیڈے.
ٹھیک ہے صاحب, ایک اور کالر ہمارے ساتھ.
جی جی ہاں جی کہیے. ہلو
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی, نام بتائیے آپ کا.
جی میرا نام خالد میر ہے جی. میں ابھی آپ لوگوں کی ڈسکشن سن رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا, میرے بھائی تھے وہ جماعت اسلامی میں تھے, تو ان سے میری بڑی آرگومنٹ ہوتی تھی, تو ان سے آرگومنٹ ہوتی تھی کہ یہ انسانیت پہلے ہے یا مذہب. تو میں نے اس طرح سے لکھا, میں کہا مجھے یہ بتائیں چاند پہ کون سا مذہب ہے. بھائی وہ انسان جائے گا تو مذہب آئے گا نا. انسانیت اس کا مطلب پہلے ہے, انسان پہلے ہے, مذہب تو بعد کی بات ہے. انسان نہیں تو مذہب کہاں سے آ گیا؟
نہیں لیکن قرآن کے اندر یہ ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن میں ہے کہ یہ کائنات جو ہے ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے ایکسپلور کرنے کے لیے, تو آپ ایکسپلور کریں گے تو چاند تک پہنچیں گے نا, ایکسپلور ہی نہیں کریں گے تو چاند تک کیسے پہنچیں گے.
مگر جی اگر آپ یہ بتائیں نا, ابھی آپ کو اچھا پوچھیں کہ جی چاند پہ کون سا ریلیجن ہے, کیا کہیں گے؟
کوئی ریلیجن نہیں ہے جی, کوئی ریلیجن,
انسان ہی نہیں ہے, انسان جائیں گے تو ریلیجن آئے گا نا.
ایگزیکٹلی ایبسولیوٹلی,
بہت صحیح تو بات ہے, بہت صحیح آپ نے.
اور دوسرا یہ کہ مجھے میرے ان سے یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ جماعت اسلامی والے صرف محب وطن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ اس میں جماعت میں عیسائی جوائن کر سکتا ہے نہ کرسچن کر سکتا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہوا ہے؟
غلط ہے یہ بالکل.
اس کا مطلب کیا وہ محب وطن نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مذہب لینگویج کلر کے اوپر جو جماعتیں بنی ہیں ان کو بین ہونا چاہیے, یہ الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے.
صحیح ہے, بالکل صحیح ہے,
یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے جماعت بنانے کا.
بالکل, مجھے تو سمجھ نہیں آتا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی ماجد بھائی کہ کس طرح کے یہ رنگ ڈھنگ بنتے جا رہے ہیں. جب میں جرنلزم ہم کرتے تھے بھائی اسلام آباد میں تھی, آپ سوچیں کہ کرسچنز کچھ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, تو جس وقت ان کی کرسمس آتی تھی ہم ان کے پاس جاتے تھے, ان کے چرچ میں جاتے تھے, ان کے لیے کیکس لے کے جانا, اسی طرح جب ہماری عید ہوتی تھی تو وہ لوگ ہمارے گھروں میں آتے تھے, اسی طرح وہ کیک لے کر آتے تھے, وہ اسی طرح انہوں نے ملنا.